लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि ख्रिस्तीय एवं अन्य सभी धर्मों के अनुयायी तथा समस्त शुभचिंतक लोग विश्व में शांति और न्याय को बढ़ावा दें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत हैं बुधवारीय आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में विश्व के विभिन्न देशों से आए हुए तीर्थयात्रियों और विश्वासियों को अपनी धर्म शिक्षा माला देने के पूर्व संबोधित करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. La catechesi di oggi è intonata alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज की धर्म शिक्षा ख्रिस्तीय एकता हेतु प्रार्थना की विषय वस्तु पर आधारित है। इस वर्ष की विषय वस्तु आतिथ्य सत्कार है, जो माल्टा और गोजो समुदाय से विकसित हुई, जिसे हम प्रेरित चरित्र में पाते हैं। माल्टा के निवासियों ने संत पौलुस और उनके साथियों का स्वागत किया, विशेषकर जब समुद्री यात्रा के दौरान उनका जहाज टूट गया था। मैंने अपने विगत दो सप्ताह की धर्म शिक्षा मालाओं में इस घटना की चर्चा की थी। हम जहाज टूटने के उस अनुभव से शुरू करें। संत पौलुस जिस जहाज पर यात्रा कर रहे होते हैं, वह करुणा की निशानी बनती है। वे 40 दिनों तक समुद्र में भटकते रहे और उन्हें ना तो सूर्य और ना ही तारे दिखाई दिए। ऐसी परिस्थिति में समुद्री यात्री हताश और निराश, अपने को खोने का अनुभव करते हैं। इसके साथ ही समुद्री तूफान जो जहाज से टकरा रहा था, उनमें भय उत्पन्न करता था कि लहरों के थपेड़ों से कहीं वह टूट न जाए। ऊपर से वे वायु और बारिश की मार से परेशान थे। समुद्र और तूफान की ताकत अपने में भयंकर शक्तिशाली थी, जिसे 260 लोगों के भाग्य की कोई चिंता नहीं थी। संत पापा ने कहा,
La fede gli dice che la sua vita è nelle mani di Dio.
विश्वास के कारण वह जानता है कि उसका जीवन ईश्वर के हाथों में है, जिन्होंने यीशु ख्रिस्त को मुर्दों में से जीवित किया है। वही ईश्वर उन्हें बुलाते और सुसमाचार के प्रचार हेतु दुनिया के अंतिम छोर तक निर्देशित करते हैं। अपने विश्वास में वे इस रहस्य से परिचित हैं कि वे एक प्रेमी पिता हैं, जिसे यीशु ख्रिस्त ने प्रकट किया है। अतः विश्वास से प्रेरित होकर वे अपने सह समुद्री यात्रियों को संबोधित करते हुए कहते हैं,
Che Dio non permetterà che un cappello del loro capo vada perduto.
ईश्वर उनका एक भी बाल बांका होने नहीं देंगे। उसकी यह भविष्यवाणी अपने में खरा उतरती है और उनका जहाज माल्टा के तट पर पहुंचता और सभी यात्री सही सलामत सूखी भूमि पर पैर रखते हैं। वहां उन्हें एक नई बात की अनुभूति होती है। समुद्री तूफान की क्रूरता के विपरीत उन्हें एक दुर्लभ मानवता का एहसास वहां के द्वीप निवासियों से होता है। वहां के अपरिचित निवासी उनकी हर जरूरतों का ख्याल करते हैं। वे उनके लिए आग जलाते जिससे वे अपने को गर्म कर सकें, पानी से बचने हेतु उन्हें आश्रय देते और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सुसमाचार को अपने में ग्रहण नहीं किया था, यद्यपि वे ईश्वर के करुणामय प्रेम का प्रमाण ठोस कार्यों में व्यक्त करते हैं। वास्तव में स्वाभाविक आतिथ्य और सेवा के कार्य ईश्वरीय प्रेम का संचार करता है। माल्टा द्वीप समूह के लोगों का आतिथ्य सत्कार संत पौलुस के माध्यम ईश्वर के चमत्कारी कार्यों में फलित होता है। माल्टा के निवासी संत पौलुस हेतु ईश्वरीय दिव्य करुणा की निशानी बने, अतः वे भी उनके लिए ईश्वरीय करुणा में प्रेम का साक्ष्य बनते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
L'ospitalità è importante, è una importante virtù ecumenica pure. Anzitutto significa riconoscere che gli altri cristiani sono veramente i nostri fratelli e nostre sorelle in Cristo.
आतिथ्य अपने में एक महत्वपूर्ण अंतरधार्मिक मूल्य है। इसका अर्थ सर्वप्रथम हमारे लिए यही है कि हम यीशु ख्रिस्त में दूसरे ख्रिस्तीय भाई बहनों को एक सच्ची पहचान प्रदान करें। यह एक तरफा उदारता का कार्य नहीं है, क्योंकि जब हम दूसरे ख्रिस्तियों का स्वागत करते तो हम उन्हें अपने लिए एक उपहार स्वरूप ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए दिए जाते हैं। माल्टा के निवासियों को उनका उपहार प्राप्त हुआ, क्योंकि हम अपने भाई बहनों में पवित्र आत्मा की कृपा को प्राप्त करते हैं जो उनके द्वारा हमारे लिए उपहार स्वरूप दिया जाता है। दूसरी रीति के ख्रिस्तियों का अपने बीच स्वागत करने का अर्थ उनके लिए ईश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करना है, क्योंकि वे ईश्वर की संतान हैं। साथ ही यह ईश्वरीय वरदानों का स्वागत करना है जिसे ईश्वर उनके जीवन में पूरा करते हैं। अंतरधार्मिक आतिथ्य इस बात की मांग करती है कि हम दूसरे ख्रिस्तियों को सुनने हेतु अपने को खुला रखें, उनके व्यक्तिगत विश्वास की घटनाओं और समुदाय के इतिहास को ध्यान से सुनें। यह आतिथ्य अपने में इस बात को सम्माहित करती है कि हम दूसरे ख्रिस्तीय समुदाय के ईश्वरीय अनुभूति को जानें और उनके द्वारा मिलने वाले आध्यात्मिक उपहारों को अपने लिए प्राप्त करें। संत पापा ने कहा,
Oggi il mare sul quale fecero naufragio Paolo e i suoi compagni è ancora una volta un luogo pericoloso per la vita di altri naviganti.
आज समुद्र में जहाज का टूटना, जैसे कि संत पौलुस और उनके साथियों के लिए हुआ था, पुनः एक बार दूसरे नाविकों के जीवन हेतु खतरे का स्थल बनता है। दुनिया के विभिन्न स्थानों में प्रवासी स्त्री और पुरुष अपनी जान जोखिम में डालते हुए हिंसा, युद्ध और गरीबी से भागने हेतु यात्राएं कर रहे हैं। संत पौलुस और उनके साथियों ने अपने जीवन में मरुभूमि, नदियों और समुद्र की उदासीनता का अनुभव किया, लेकिन उनसे भी अधिक दुर्भाग्यवश उन्होंने कई बार मनुष्यों में अधिक शत्रुता को पाया। वे देह व्यापारियों द्वारा अत्याचार के शिकार हुए, अधिकारियों ने उन्हें भय के रूप में पाया, तो वे कभी समुद्री लहरों द्वारा आतिथ्य से दूर धकेल दिए गए।
Noi come cristiani dobbiamo lavorare insieme per mostrare ai migranti l'amore di Dio rivelato da Gesù Cristo.
ख्रिस्तियों के रूप में हमें प्रवासियों के लिए एक साथ मिलकर कार्य करने की जरूरत है, जिससे वे यीशु ख्रिस्त के प्रेम का अनुभव कर सकें। संत पापा ने कहा, हम अपने जीवन के द्वारा उन्हें इस बात का अनुभव कराएं कि हर व्यक्ति ईश्वर के लिए अमूल्य है, न कि दुनिया केवल उदासीनता और शत्रुता से भरी है। ईश्वर हर व्यक्ति को प्रेम करते हैं। हमारे बीच विभाजन जो अब भी व्याप्त है, हमें उन्हें ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति प्रदान करने में अवरोधक न बने। अंतरधार्मिक आतिथ्य की अनुभूति हेतु एक साथ मिलकर हमारा कार्य करना, विशेषकर उनके लिए जो अपने में अति संवेदनशील परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं, हमें सच्चे अर्थ में ख्रिस्तीय बनाएगा। हम बेहतर मानव, बेहतर यीशु ख्रिस्त के शिष्य और एकता में अधिक संगठित ख्रिस्तीय बन पाएंगे। यह हमें एक दूसरे के और करीब लाएगा, जिसकी आशा यीशु ख्रिस्त हमसे करते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Pane nostro quotidiano da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatio.
Domino Hobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
ईश्वर तू है जीवन सहारा मेरा ईश्वर तू है जीवन सहारा डूबती नैया का तू है किनारा मेरा ईश्वर तू है जीवन सहारा मेरा ईश्वर तू है जीवन सहारा
निगाह मेरी कब से तुझ पे लगी हुई है
निगाह मेरी कब से तुझ पे लगी हुई है
कृपा तो देना प्रभु वर आस बधी है
आगे ना बढ़ सकूंगा मैं आगे
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं लीजिए प्रस्तुत है समाचार संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के अंत में विश्व के पूर्वी देशों के लोगों को लूनर न्यू ईयर चंद्र नव वर्ष की शुभकामनाएं दी जो इस वर्ष 25 जनवरी को मना रहे हैं। संत पापा ने कहा सुदूर पूर्व में और दुनिया के अन्य हिस्सों में लाखों पुरुष और महिलाएं 25 जनवरी को चंद्र नव वर्ष मनाएंगे उन्हें मैं अपना सौहार्दपूर्ण अभिवादन भेजता हूं। मेरी शुभकामना है कि परिवार विशेष रूप से आतिथ्य सत्कार ज्ञान और प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान की शिक्षा का स्थान बने तथा सृष्टि के साथ सद्भाव बढ़े। संत पापा ने सभी को शांति संवाद और राष्ट्रों के बीच एकजुटता के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया जिसकी आज की दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक है। विदित हो कि चीनी ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष का पशु चूहा है। यह चंद्र कैलेंडर के पहले नए चंद्रमा से शुरू होता है और चंद्र कैलेंडर की पहली पूर्णिमा पर 15 दिन के बाद समाप्त होता है। चीन में बसंत महोत्सव के रूप में भी यह जाना जाता है। चीनी नव वर्ष एशिया के कई चंद्र नव वर्षों में से एक है। उधर स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मैरीन वन हेलीकॉप्टर को दावोस में उतारा गया। वहां बर्फ में एक्ट ऑन क्लाइमेट लिखा गया था लेकिन उन्होंने जल्द ही स्विस आल्प में स्की करने के लिए एकत्रित लोगों को स्पष्ट कर दिया कि वे जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणियों के बारे में चिंतित नहीं हैं। जीवाश्म ईंधन उद्योग का समर्थन करने और पेरिस जलवायु समझौते से हटने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की गई है। हालांकि राष्ट्रपति ने अपनी नीतियों का बचाव किया और कहा कि अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करेगा। उन्होंने अमेरिका की बढ़ती अर्थव्यवस्था की प्रशंसा की। उन्होंने यह कहते हुए दावा किया कि ऐसी अर्थव्यवस्था दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं के बारे में ट्रंप ने कहा खतरा बताने वाले लोग हर समय यही मांग करते हैं हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली बदलने वाली और नियंत्रण करने वाली ताकत ये समय उम्मीद का है ना उम्मीदी का नहीं। डर और संदेह एक अच्छी विचार प्रक्रिया नहीं है। कल की संभावनाओं को गले लगाने के लिए हमें कयामत के पैगंबरों और उनके द्वारा की गई पर्यावरण सर्पनाश की भविष्यवाणियों को अस्वीकार करनी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप के बोलने के बाद स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता 17 साल की ग्रेटा थनबर्ग ट्रंप का नाम लिए बिना दुनिया के तमाम नेताओं को चेतावनी दी। अपनी चेतावनी में उन्होंने कहा मुझे आश्चर्य है कि आप अपने बच्चों को नाकाम होने के बारे में क्या कहेंगे।
आपने जानबूझकर उन्हें पर्यावरण के लिहाज में विषम परिस्थितियों में पहुंचा दिया है। यह इतना बुरा है कि आप अर्थव्यवस्था के नाम पर उन्हें बेहतर भविष्य देने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने यह भी कहा कि कम से कम अपने बच्चों के लिए कुछ कीजिए। अगर आप लोगों ने अब ध्यान नहीं दिया तो समझ लीजिए कि आप अभी आग से खेल रहे हैं। उधर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के धर्म प्रांतों की कलीसिया के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के कैथोलिकों की एकजुटता का संकेत 25 और 26 जनवरी का दान संग्रह है। अमेरिकी धर्माध्यक्ष सम्मेलन द्वारा आयोजित वार्षिक संग्रह 50 से अधिक वर्षों से जारी है, जिसका उद्देश्य लैटिन अमेरिकी कलीसिया के धर्म प्रांतीय उदार कार्यक्रमों, युवा लोगों और परिवार के प्रेरितिक देखभाल का समर्थन देना है। अमेरिकी धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष ओतावियो ने अमेरिका के कैथोलिकों को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया, जिनके सहयोग से लैटिन अमेरिका के कारितास द्वारा उदार कार्यों को संपन्न करने और ख्रिस्तियों को अपने विश्वास को सक्रिय रूप से जीने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि वार्षिक संग्रह की निधि से 150 से अधिक गरीब युवाओं को स्थानीय समुदाय के बीच सुसमाचार का प्रचार करने और पूरे देश में अपने विश्वास को साझा करने का प्रशिक्षण मिला। वाशिंगटन की कलीसिया की आर्थिक मदद से हाइती के 235 युवाओं को पानामा में आयोजित विश्व युवा दिवस 2019 में भाग लेने का अवसर मिला। इन युवाओं ने संत पापा फ्रांसिस का दर्शन किया और उनके आशा और दया भरे प्रवचनों को सुना। धर्माध्यक्ष ओतावियो ने कहा कि लैटिन अमेरिकी कलीसिया को खासकर तूफान और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं से तबाह हुए क्षेत्रों के लिए नवंबर 2019 में लगभग 4.2 मिलियन डॉलर दान दिए गए थे। उधर चीन के वुहान शहर में उत्पन्न होने वाले वायरस ने अब तक 9 लोगों की जान ले ली है और देश भर में 440 अन्य लोगों को संक्रमित कर दिया है। इसकी पुष्टि आज सुबह राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के उपनिदेशक ली विन ने की। सभी मौतें हुबोई प्रांत में पंजीकृत हैं और सरकार संक्रमण को रोकने के लिए संगरोध उपायों का विस्तार कर रही है। राष्ट्रीय सरकार ने चिकित्सा संस्थानों को आदेश दिया है कि वे सभी रोगियों या उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को अलग रहने के लिए बाध्य करें। प्रत्येक संक्रमण को 2 घंटे के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। वुहान नगर परिषद ने नागरिकों को यह निर्देश दिया कि वे आवश्यक मामलों को छोड़कर शहर से बाहर न जाएं, हमेशा मास्क पहनें, लगातार भीड़ वाली जगहों में न जाएं, अक्सर अपने हाथ धोएं और यहाँ वहाँ न थूकें। वुहान हेंको वुचांग के कैथोलिक गिरजाघरों को बंद कर दिया गया है। सभी दैनिक मिसा समारोह और 25 जनवरी नव वर्ष का मिसा समारोह रद्द कर दिया गया है। ताइवान और मकाऊ में भी संक्रमण के नए मामले देखने को मिले। उधर इराक में अस्थिरता की स्थिति जारी है। ग्रीन जोन में कल 3 रॉकेट के विस्फोट के बाद सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। बगदाद और अन्य इराकी शहरों में प्रदर्शनों के दौरान हुई झड़पों में कई लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए। अक्टूबर के बाद से खाड़ी देश के दक्षिणी मध्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। देश की नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं और भ्रष्टाचार समाप्त करने तथा अधिक सामाजिक सेवाओं को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।